शांति। राजयोग सर्वोत्तम योग, राजयोग का आधार एवं विधि, इस विषय पर संबोधन करने हेतु हमारे बीच आदरणीय शीलू दीदी जी उपस्थित हैं। आप सभी महान आत्माओं से अनुरोध है, करतल ध्वनि से हम दीदी का बहुत बहुत फिर से स्वागत करते हैं। प्रथम सत्र में हमने आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया, द्वितीय सत्र में परमात्मा का परिचय मिला, अभी भी मिलन बाकी है। कैसे आत्मा का मिलन परमात्मा से करना है, ये सुंदर विधि आदरणीय शीलू दीदी जी सिखाएंगे अपने अनुभव के माध्यम से। 1960 से दीदी जी ने राजयोग का अभ्यास किया है, अपने अनुभव के आधार पर राजयोग शिविर में तीसरा कदम रखवाएंगे आदरणीय शीलू दीदी जी। राजयोग सर्वोत्तम योग, इस विषय पर हम सुनेंगे आदरणीय दीदी के द्वारा। कहा जाता है दीप की शोभा ज्योति से होती है, दीप की शोभा ज्योति से होती है, राजयोग शिविरों की शोभा आदरणीय शीलू दीदी से होती है, आदरणीय शीलू दीदी से होती है। तो हम सुनेंगे और जानेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे।
ओम शांति, सभी कहेंगे एक साथ ओम शांति। अभी अभी हम सब ने एक मधुर गीत सुना, ज्योति बिंदु परमात्मा से ए मेरी आत्मा तू कर ले मिलन, परमानंद का अनुभव कर ले तू हो जा मन में मगन। तो राजयोग क्या है, ज्योति बिंदु परमात्मा से आत्मा का मिलन, जिस मिलन से आत्मा वो परम आनंद का अनुभव करती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के गुणों में मगन हो जाती है। अब वो सब कैसे हो, आज हम उसी पर आपको बताएंगे। राजयोग का आधार और विधि, राजयोग क्या चीज है। कोई भी इमारत बनाते हैं, कुछ भी निर्माण करते हैं, तो पहले उसका आधार होता है, बेसिस, फिर उसकी विधि होती है कैसे वो बनाना है। तो राजयोग का भी आधार है और विधि है। अब उसको समझने से पूर्व हम योग का अर्थ समझेंगे। योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है जोड़, मिलन, संबंध, मिलाप। योग का विरुद्ध शब्द है वियोग। वियोग माना अलग होना, दूर जाना, बिछड़ना, उसको कहेंगे वियोग। तो उसकी भेंट में योग माना मिलना, जुड़ना, एक होना, उसको कहेंगे योग। तो देखा जाए योग तीन प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक, वस्तुओं का, वस्तुओं से योग, दो चीजों को जोड़ते हैं, वो भी एक योग है। दूध में चीनी मिलाते हैं तो दूध मीठा हो जाता है, क्योंकि चीनी का योग हुआ दूध के साथ। तो जिस चीज का योग हुआ उसका गुण मिल जाता है, रेडियो ऑन करते हैं, कोई दूर की रेडियो स्टेशन चाहिए तो हमें साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी, मीटर बैंड, वेवलेंथ ये सब मालूम हो, तो हम सहज अपने रेडियो की सुई वहाँ रखेंगे और हम दूर की आवाज़ भी अपने रेडियो पर कैच कर सकेंगे। तो ये भी योग है। उस रेडियो स्टेशन से हजारों मील की दूरी पर भी होगा, लेकिन हमारा रेडियो रिसीवर अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो उसको कैच कर लेगा। तो ये भी एक योग है। और योग शब्द से कितने और शब्द जुड़े हुए हैं। सहयोग, दो व्यक्ति मिलके कार्य करते हैं, वो भी योग है। सहयोग, संयोग, संयोग भी कहते हैं। हमने कोई बात सोची और वो बात हो गई तो कहते क्या संयोग था, हमने सोचा और हो गया। दो चीज़ों को एक प्रयोगशाला में मिलाते हैं, वो प्रयोग करते हैं, तो वो भी एक योग है। तो इसी प्रकार योग शब्द को हम कई रूप से यूज़ करते हैं। किसी कुमार कुमारी की सगाई करानी है, उनका विवाह करना है, तो भी योग देखा जाता है। दोनों की जन्म पत्री ज्योतिषी के पास ले जाते हैं और कहते ज़रा इनका योग देखो है। योग देखो है का मतलब है कि इनके ग्रह मिलते हैं, आपस में मेल खाते हैं। तो ग्रह, संस्कार, स्वभाव, इनमें अगर कोई समानता है तो कहेंगे योग है। अगर ये एक टक्कर खाते हैं तो कहेंगे योग नहीं है। फिर योग अगर करना ही है, विवाह करना ही है, तो फिर ज्योतिषी उपाय बताता है उसके लिए, कुछ त्याग करने लिए कहता है। इतना व्रत रखो, ये नियम रखो, ये उपवास करो, ये यहाँ ये क्या कहते हैं, दर्शन करो, पूजा करो, पाठ करो, आदि आदि कुछ न कुछ इसके लिए त्याग करना होता है। तो अगर त्याग करेंगे तो ग्रह प्रसन्न होंगे और आपका योग होगा। अब इसका वास्तव में आध्यात्मिक अर्थ है। योग को अगर हम उस रूप से समझते हैं तो एक तो स्थूल चीज़ों का योग है। हमारी बिजली की तार फ्यूज जो है वो उड़ गया तो अंधेरा हो गया। भी अंधेरा क्यों हुआ? क्योंकि फ्यूज उड़ गया। तो कैसे उसको जोड़ते हैं, वो भी योग है। जो पावर हाउस से बिजली आती है उसमें तो करंट है, लेकिन हमारी तार टूट गई तो उसको जोड़ने लिए क्या करते हैं, रबर को हटाना पड़ता है, रबर का त्याग करना पड़ता है। और अंदर की तार जो तांबे की है उसको तांबे से जोड़ना पड़ता है। और फिर करंट जो पावर हाउस से आ रही है उससे हमारी घर में बिजली आएगी, करंट पास होगी, अब वो भी योग है। मानसिक रूप से भी योग है। हम किसी को बहुत याद करते हैं और अचानक वो व्यक्ति पहुंच जाता है, हम कहते अरे क्या योग था मेरा, आपको हम अभी अभी याद कर रहे थे और आप आ गए, अच्छा हुआ। तो किसी को याद करना भी एक योग है, क्योंकि मन से मिलन हो गया, मुझे उसकी, मैंने उसको याद किया, उसको भी मेरी याद आई और तुरंत पहुंच गया। तो मन से मिलन है। और जब मन से मिलन होता है तो उसमें भी प्राप्ति होती है। आप एक बहुत सुखद घटना को याद करें, मान लो बहुत अच्छी घटना घटी थी, कुछ आपको उस समय प्राप्ति हुई थी, कोई नाम मान आपका कुछ बढ़ा था, आपकी महिमा हुई थी, कोई ट्रॉफी मिली थी, कोई अवार्ड मिला था, और उस बात को आप याद करो, हालांकि वो कुछ साल पहले हुआ होगा, लेकिन आज भी उसको आप याद करेंगे तो आपका चेहरा खिल जाएगा, आपको खुशी होगी। जबकि कोई अभी कोई वो प्रसंग नहीं है, प्रसंग तो बहुत समय पहले हो गया, लेकिन कोई खुशी की घटना को आप याद भी करते हैं ना तो आपके मन में खुशी आ जाती है, और उसके विपरीत कोई दुखद घटना को याद करते हैं और ऐसी दुख की बात याद आ गई तो तुरंत उसी समय आपके मन में दुख होने लगता है। तो ये भी एक योग है, लेकिन जो आध्यात्मिक रूप का योग है जिसको हम राजयोग कहते हैं वो तीसरे प्रकार का है, जिसमें आत्मा का मिलन योग परमात्मा के साथ होता है, और उसमें भी मिलन कौन कराता है? मन। मन के द्वारा ही आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, इसीलिए गीता में लिखा है हे अर्जुन इस मन को मेरे में लगाओ। जब अर्जुन को ये कहा मन को मेरे में लगाओ तो अर्जुन ने शिकायत की कि ये मन तो बहुत चंचल है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, घोड़ा है, ये तो बेलगाम होके भटकता रहता है, भागता रहता है, इस मन को हम मैं कैसे वश करूं, कैसे लगाऊं? क्योंकि भगवान ने कहा इस मन को मेरे में लगाओ। तो जब कहा कि ये नहीं होता है, मन बहुत चंचल है, एकाग्र नहीं होता है, तो भगवान ने अर्जुन को दो कदम बताए जो गीता में आते हैं कि ये अगर आप दो कदम चलेंगे तो आपका मन लगेगा परमात्मा में। और क्या दो कदम बताए? पहला कदम बताया वैराग्य, क्योंकि अगर वैराग्य होगा तो और बातों से मन उपराम होकर ईश्वर में लगेगा। अगर सब जगह आपका बहुत आकर्षण है तो मन ईश्वर में नहीं लगेगा, तो वैराग्य। और दूसरा कदम बताया अभ्यास। वैराग्य और अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है। अब ये बात तो बहुत सुंदर है, लेकिन जब वैराग्य शब्द आता है तो कई लोग बहुत डर जाते हैं। वो समझते वैराग माना सब छोड़ देना, संसार छोड़ देना, तो कहते हम कैसे योग करेंगे, क्या हमको सब छोड़ देना पड़ेगा? हमारा परिवार है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, नौकरी है, धंधा है, न जाने कितना बड़ा कारोबार है, तो वैराग आ जाए तो ये सब कैसे चलेगा? तो भगवान ने ये नहीं कहा है छोड़ो, छोड़ो कुछ भी नहीं, लेकिन ये जरूर कहा कि फंसो मत। अब फंसे नहीं ये भी एक कला है। जैसे एक नट होता है वो रस्सी पर चलता है, पहले जमाने में नुक्कड़ पर, गांव में नुक्कड़ पर वो दो डंडे बांधते थे और बीच में रस्सी बांधते थे और व्यक्ति एक रस्सी पर चलता था, लेकिन गिरता नहीं था। क्या विशेषता थी उसकी? उसके अंदर एकाग्रता होती थी, उसके अंदर लक्ष्य होता था, उसको अभ्यास था। बिना अभ्यास के नहीं हो सकता है। अगर अभ्यास नहीं होता तो तुरंत गिर जाता व्यक्ति, तो चलते चलते भी गिर जाते हैं, है ना? और वो इतनी वो रस्सी पर भी चलता है तो भी गिरता नहीं है, कितना अभ्यास होगा उसका। तो वैराग्य और अभ्यास का मतलब है कि मन कैसे उस समय उससे और बातों से उपराम हो, और साथ में लक्ष्य निर्धारित हो कि हमें पहुंचना ही है। अब ये सब बातें राजयोग में भी आती है, तो इसीलिए आध्यात्मिक स्तर का राजयोग जो योग है वो राजयोग है। और क्योंकि इसमें हमारा जो योग है वो सर्वोच्च से योग है, व्यक्तियों से योग तो हमारा सहज है, मन सदा कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, व्यक्ति वस्तु वैभव घटनाएं स्थान परिस्थितियां कितनी बातें मन में आती रहती है, अगर आप उस समय चार्ट रखो कि मेरे मन में क्या क्या विचार चले, इस एक घंटे के अंदर कितने विचार चले, आप लिख सकते हो कि ये विचार आया, वो विचार आया, वो विचार आया। तो इसीलिए विचारों को भी हम, पता तो चलता है ना क्या क्या आप सोच रहे हैं, लेकिन वो ईश्वर का विचार आवे, जिसको हम कहते हैं सर्वोच्च सत्ता, उसको हम याद कर सके, तो वास्तव में ये है सच्चा योग। तो सर्वोच्च कौन? एक परमात्मा, उसके साथ मन की तार जोड़नी है। अब इससे इसकी जो विधि है ये कठिन नहीं है, बहुत सरल है, क्योंकि एक हिसाब से तो आप सभी योगी हो। अगर मैं आपसे पूछूं आप सब योगी हो, आप कहेंगे हाँ, क्योंकि मन जिसके विषय में सोचता उसके साथ योग है। एक माँ का योग अपने बच्चे के साथ होगा, खाना भी पकाती होगी, बच्चा उसका सोया है तो भी उसका याद ध्यान जाएगा, मेरा बच्चा उठ न जाए, तो खाना भी पका रही है पर याद बच्चे को कर रही है, खाना पका रही है याद पति को कर रही है। ऐसे नहीं कि नहीं कर सकती है, ऐसे नहीं कि खाने में ही हर वक्त मन है। तो याद तो हम कहीं भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, कर्म से तो कुछ भी अलग चीज कर रह सकते हैं। तो हर कर्म में उस परमात्मा की याद रहे, वो राजयोग है। तो सर्वोच्च से योग है, और फिर इसकी विधि कठिन नहीं है, क्योंकि मन को तो आदत है कुछ ना कुछ सोचने की, तो ये मन क्या सोचे वो बताया जाता है। और फिर तीसरी बात है कि जो प्राप्ति है वो भी सबसे ऊंची है। अब हम देहधारियों को प्राप्त याद करते हैं तो जैसा संबंध होता है वैसी अनुभूति होती है। अब ईश्वर से हमें क्या प्राप्ति करनी है वो जब हमें पता चल जाती है तो सचमुच मन आपका और कहीं जाएगा ही नहीं, इतनी प्राप्तियां होती है। और वो प्राप्तियों का पता चल जाए तो बस फिर तो आप सच्चे योगी बन गए, कोई शिकायत नहीं होगी कि मन चंचल है, ये है। तो क्या कारण है जो मन नहीं लगता ईश्वर में? देहधारियों में मन लगाने में कोई आप शिकायत नहीं करेंगे, कोई माँ ये शिकायत नहीं करेगी मेरा बच्चे में मन नहीं लगता, मेरे पति में मेरा मन नहीं लगता, ऐसे कभी नहीं कहेगी। इतना सहज लग जाता है क्योंकि पता है वो मेरा इससे ये मेरा संबंध है। इसीलिए जब पता है तो बड़ा सहज है, लेकिन परमात्मा से योग क्यों नहीं लगता है? क्योंकि पहला कारण है कि हम खुद को नहीं जानते। मैं आत्मा हूं ये नहीं जानते, अपने आप को शरीर ही समझते हैं। मैं फलाने नाम रूप धर्म जाति भाषा प्रांत देश या व्यवसाय, मतलब जो सांसारिक बातें हैं वही मन में है तो वही बातें हम सोचेंगे, तो उसी अनुसार मन वहीं जाएगा। लेकिन जब हमें ये पता चलता है मैं एक आत्मा हूं, तो आत्मा का मन परमात्मा में जाएगा, क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ ही है, देह का संबंध बाकी सब बातों से है, व्यक्ति वस्तु वैभव का संबंध सब देह के साथ है, आत्मा का संबंध बस एक परमात्मा के साथ है। जो भी देह के साथ संबंध है वो सब विनाशी है, वो सब कर्मों अनुसार संबंध है, और जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा होता है कोई किसी का भी नहीं है, उसको अलविदा करना ही पड़ता है हाथ जोड़ करके कि बस आप अभी जाइए, भेजना ही पड़ता है ना। और कहाँ भेजेंगे? शमशान घाट में। तो शमशान घाट में उनको उनका अंतिम संस्कार करेंगे, क्योंकि ये शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है, तो पंच तत्वों का शरीर पंच तत्वों में वापस भेजते हैं, लेकिन आत्मा को याद करते हैं जरूर। और क्या कहते हैं, हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना, क्योंकि आत्मा उस परमात्मा के पास गई जो उसका स्रोत है। हर चीज अपने स्रोत के पास वापस जाती है। तत्व पांच तत्व है तो पांच तत्वों में चला गया शरीर, आत्मा का स्रोत परमात्मा है तो परमात्मा में मन लगेगा। इसीलिए हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना। इसलिए जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक मन परमात्मा में नहीं लगेगा। तो अभी आपको सुबह आत्मा का परिचय दिया, फिर दूसरा कारण क्यों मन नहीं लगता वो है कि परमात्मा कौन है यही पता नहीं। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, ओ गॉड, हे अल्लाह, हाँ चलो कह दिया, हे खुदा, सब कह दिया, ओ गॉड, ये भी सब कुछ कह दिया, केवल कहने से थोड़े मन लगता है। और वो भी जब दुख की घड़ी आती है तब निकलता है हे भगवान, जब सुख की घड़ी है तो वो तो याद ही नहीं आता है भगवान। तो इसीलिए परमात्मा कौन है यही पता नहीं था। अब आपको उसका भी परिचय दिया कि हम परमात्मा किसको कहेंगे। फिर तीसरा भी एक कारण है, अगर आत्मा और परमात्मा का परिचय आपको मिल गया तो भी मन भटक सकता है, क्योंकि तीसरा कारण है कि मन इतना मैला हो गया है, मैला हो गया है मन। अब उस मैले मन में जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष सब मन के अंदर ही आता है पहले, फिर मुख पर और कर्म में आता है। अब वो इतना मैला हो गया मन, उसमें ईश्वर जगह कैसे ले, स्थान कैसे ले। मंदिर भी बनाते तो कितना स्वच्छ रखते हैं, पूजा भी करते तो नहा धो करके स्वच्छ होकर के करते हैं, तो स्वच्छता चाहिए। दूध इतना स्वच्छ साफ सफेद होता है, उसको रखने के लिए भी बर्तन कितना साफ चाहिए। अगर मैला बर्तन होगा तो दूध तो मैला हो जाएगा, और खटाई वाला बर्तन होगा दूध को उबाला तो फट जाएगा। तो इसीलिए बहुत साफ करना पड़ता है बर्तन को दूध रखने के लिए, उसका बर्तन अलग ही रखते हैं ताकि और कुछ उस बर्तन में हम न पकाएं या कुछ डालें। तो परमात्मा की याद किस मन में ठहरेगी जो इतना स्वच्छ हो। अब उसको स्वच्छ कैसे करें वो भी राजयोग हमें सिखाता है। चीजों को स्वच्छ कैसे करें वो तो सिखाना नहीं पड़ता है, पता है, लेकिन मन को स्वच्छ कैसे करें। हम बच्चों को जो भी बातें सिखाते हैं, बच्चे ऐसे नहीं बोलो, बच्चे ऐसे नहीं करो, तो क्या करो क्या नहीं करो, क्या बोलो क्या नहीं बोलो, ये तो बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन क्या सोचो क्या नहीं सोचो ये तो आजकल कोई सिखाता ही नहीं है। तो ये भी सिखाना बहुत जरूरी है, क्या सोचो क्या नहीं सोचो, तभी तो वो अगर स्वच्छ मन होगा तो परमात्मा की याद भी उसमें ठहरेगी ना। तो ये तीन मूल कारण है जो मन परमात्मा में नहीं लगता है। तो इसीलिए क्या राजयोग की क्या परिभाषा देंगे, स्वयं को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को यथार्थ रूप से याद करना, उनके साथ मेरे संबंध है। देहधारियों के साथ जो संबंध है वो तो एक जन्म के हैं, हिसाब किताब पूरा हुआ, संबंध भी पूरा हुआ, लेकिन ईश्वर के साथ कोई कर्मों का संबंध नहीं है, वो तो अनादि और अविनाशी संबंध है। हर जन्म में हमने परमात्मा को हे परम पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा याद किया है, एक को ही किया है। इसीलिए वो एक को जब पहचाना तो स्वयं को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को यथार्थ रूप से याद करना, ये राजयोग मेडिटेशन है। अब यथार्थ रूप क्या होता है वो भी हम जानेंगे, क्योंकि आजकल दुनिया में कई प्रकार के स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, कई प्रकार के योग सिखाए जाते हैं, मेडिटेशन भी कई प्रकार की सिखाई जाती है। कोई तो कहेंगे कि इसमें अपने मन को शून्य करना है, कोई ये भी कहेंगे एकदम मन शून्य हो जाए, कुछ भी सोचना नहीं है। अब राजयोग कहता है कि मन को शून्य कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मन का काम ही सोचना है। अब एक चंचल बच्चा है, बहुत चंचल है, आप उस चंचल बच्चे का हाथ पैर बांध के रखो, मुंह पर सेलो टेप लगा दो, जो चाहिए करो, और कहो कि बच्चे तुमको यही बैठना है, हिलना नहीं है। अब वो चंचल बच्चा कैसे बैठेगा, उसकी प्रकृति चंचल है। तो चंचल बच्चे को ऐसे बांध के बिठा नहीं सकते हैं। तो मन को भी आप ऐसे कहो शून्य हो जाओ, कुछ नहीं सोचो कुछ नहीं सोचो, ऐसे कभी नहीं होगा। इसीलिए शून्य बनाना ये कोई मेडिटेशन है ही नहीं। फिर कई कहते हैं क्या इस पर दबाव डालना पड़ता है, हम कहते हैं दबाव भी नहीं डालना है, बहुत सहज है। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा अपने माँ बाप को याद करता है, कैसे याद करता है, जैसे बच्चा बोलना सीखता है मम्मा 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 पापा 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 हाँ दादा, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, बस यही मुख उनका चलता है। तो माँ को याद करता है, पिता को याद करता है, मुख से बोलता भी है, कितना स्वाभाविक है। इसलिए दबाव तो डालने की बात ही नहीं है। फिर कोई कहते हैं मन तो इतना चंचल है हम तो मेडिटेशन कर ही नहीं सकते, ये भी ऐसे सोच लिया जैसे कि हमारे वश की बात ही नहीं है। क्यों नहीं कर सकते मेडिटेशन? आप कोई गहरी सोच में चले जाते हो तो बाहर की बातें आप देखते हुए भी नहीं देखते हो, एक ही उस गहरी सोच में चले जाते हो। कोई सुना रहा है आपको कुछ वो भी नहीं सुनते हो, कोई दिखा रहा है वो भी नहीं देख रहे हो, क्योंकि आप एक गहरी सोच में हो। तो वो जो सोच आप कर रहे हो उस सोच को परिवर्तन कर ईश्वर के बारे में सोचें तो क्यों नहीं मेडिटेशन हो सकता है, बहुत सहज हो सकता है। अब वो कैसे करें? तो कई फिर कहते हैं इसके लिए क्या हमें आसन लगाना पड़ेगा। अब आसन के लिए तो कोई सभी तो नहीं लगा सकते, कितने प्रकार के आसन हैं। अब हर एक आसन तो सभी नहीं कर सकते। कोई कहते हैं अच्छा कम से कम पद्मासन तो सीखना चाहिए, हम कहते हैं पद्मासन भी सब नहीं कर सकते, कईयों को घुटनों की प्रॉब्लम होती है, वो पद्मासन कैसे करेंगे, रीढ़ की हड्डियों में दर्द होता है या आर्थराइटिस है तो वो पद्मासन कैसे करेंगे, मुश्किल होता है ना। तो हम कहते पद्मासन भले मत करो, पद्मासन करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठ सकते हो, सोफा पर बैठ सकते हो, लेट के भी कर सकते हो, लेकिन पद्म जैसा जीवन बनाओ, ये है मूल बात। पद्म माना कमल, कमल का फूल, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी न्यारा रहता है, ऐसा अपने मन को बनाओ, उस कीचड़ का आपके ऊपर असर न हो, ये है सच्चा पद्मासन। शीर्षासन करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए अगर शीर्षासन बैठ के करेंगे, सब नहीं कर सकते हैं, पर जरूरत भी नहीं है। तो सिर पर आसन करना ये जरूरी नहीं है, पर सिर को संतुलित रखना ये जरूर आवश्यक है। तो मन का संतुलन चाहिए, मन हर वक्त संतुलित रहे, मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सब में समान रह सके, तब कहेंगे कि हम सच्चे योगी है, सच्चे ज्ञानी है। इसीलिए गीता में आता है अर्जुन ने भगवान से पूछा ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण क्या है, क्योंकि जो सचमुच ज्ञानी होगा वो योगी भी होगा। तो बहुत सुंदर जवाब दिया, ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण क्या है, वो हर परिस्थिति में संतुलित रहेगा, मान चाहे किसी उसको मान दो तो प्रफुल्लित नहीं हो जाएगा, फुगे की तरह फूल नहीं जाएगा, और अपमान करो तो जैसे सुई डाल दी फुगे में और वो निकल गई हवा, ऐसे नहीं होगा। तो चाहे मान दो, चाहे अपमान करो, चाहे उसकी महिमा करो, चाहे ग्लानी करो, निंदा करो, स्तुति करो, सुख और दुख हर परिस्थिति में वो मन की स्थिति उसकी समान है, उसको कहेंगे सच्चा योगी। और वो कैसे होगी, जब उसके प्रभाव में ना आए। अगर प्रभाव में आ गया, मान मिला तो फूल गया, फिर किसने अपमान किया तो एकदम छुई मुई हो गई। एक पेड़ आता है छोटा सा, छुई मुई, टच मी नॉट, तो उसके पत्ते ऐसे होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, उसके नज़दीक में जाकर खाली उंगली लगाई भी नहीं है, थोड़ा नज़दीक ही गए वो पत्ते जो है वो नीचे चले जाते हैं, मना जैसे नीचे हो गिर जाते हैं, गिरते नहीं है मतलब नीचे हो जाते हैं, वो टच किया ही बस। तो परमात्मा कहते ऐसा भी नहीं बनना है, पर उसके लिए हमारी आंतरिक स्थिति इतनी ऊंची चाहिए, तभी तो हम स्थिर रह सकेंगे ना। तो इसीलिए आसन की कोई ज़रूरत नहीं है, सुखासन पर बैठ सकते हैं आराम से, जो आप जिस स्थान पर आप अच्छी तरह से बहुत हिले डुले ज़्यादा नहीं, आप आराम से बैठ सको वैसे ही बैठो, मना नहीं है। फिर कई कहते इसके लिए चारों ओर वातावरण एकदम शांत होना चाहिए, कई बहाने देते हैं, इसीलिए मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे घर के आसपास बहुत आवाज़ है। लेकिन वातावरण कैसा भी, आवाज़ कितना भी हो, फिर भी हम अपने मन में शांति का अनुभव कर सकते हैं। और उसका बहुत अच्छा उदाहरण है जब मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, हाँ तो देखो कैसे, चाहे वो झांझ बज रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, हाँ भजन हो रहा है, ढोल बज रहे हैं, घंटे बज रहे हैं, लोग पूजा कर रहे हैं, आरती हो रही है, और हमारा मन कितना शांत है, वो आवाज़ को वो आवाज़ नहीं महसूस कर रहा है, उसको उससे खुशी होती है, आनंद आता है। तो इसीलिए मेरे घर के पास बहुत आवाज़ है, इसलिए मेडिटेशन नहीं कर सकता, वो हमको आवाज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि मन में वो अनहद नाद जिसको कहते हैं ना, वो अनुभव हो रहे, तो बाहर का आवाज़ क्यों हमें रुकावट डालेगा। फिर कई कहते इसके लिए आंखें बंद करनी होती है, आंखें बंद करके बैठना होता है हमको, हम कहते उस वो भी ज़रूरत नहीं, भले आंखें खुली रखो, क्योंकि सारा समय तो आंखें बंद करके नहीं बैठ सकेंगे, चलना फिरना खाना पीना उठना बैठना कितना होता है, गाड़ी चलाते और आप मेडिटेशन करो आंखें बंद करेंगे तो एक्सीडेंट कर देंगे। लेकिन अगर सच्चा मेडिटेशन है तो आपकी एकाग्रता इतनी होगी जो कभी एक्सीडेंट नहीं करेंगे। तो इसलिए आंखें बंद करने की बात नहीं है, पर हाँ बाहर की जो चकाचौंध है उसके आकर्षण से परे ज़रूर जाना है। फिर कई कहते अच्छा तो लगता लेकिन ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। अब बोर क्यों होते हैं, क्योंकि हम केवल मंत्र जाप करते हैं, और वो भी हमें कहा जाता है 1,00,000 बार जाप करना या इतना जाप करना, तो वही मंत्र बार बार रिपीट करते हैं, अब उसका अर्थ तो समझा नहीं है। मान लीजिए आपको कहा जाए ये ओम नमो शिवाय का जाप करो, और आप ओम नमो शिवाय का जाप करते रहेंगे, फिर गिनती करते रहेंगे कितनी बार हुआ जाप, तो योग आपको आपका शिव से नहीं हुआ, योग आपका गिनती से हुआ कि कितनी बार हुआ। अगर शिव से योग होता तो गिनने की ज़रूरत ही क्या है। कोई स्त्री अपने पति को भूल थोड़ी सकती है, मैं किसकी पत्नी हूँ, परंतु उसको क्या बैठ करके उसका नाम थोड़ी जपती है, केवल वो अंदर में उसको पता है मैं कौन हूँ, मैं किसकी पत्नी हूँ। तो इसीलिए हम परमात्मा के हैं, हम आत्मा हैं, हम शिव पिता की संतान हैं, तो उसके लिए कुछ आधार होता है, विधि होती है, उसको समझ करके जब हम ये मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ही सहज है, हम उबेंगे नहीं, क्योंकि रचनात्मकता होती अंदर में, एक क्रिएटिविटी है। जैसे चंचल बच्चे को आप नहीं बिठा सकते एकदम चुप करके चुप नहीं होगा, लेकिन उस चंचल बच्चे को कुछ काम दो, काम दो और एक नवीन काम दो। ऐसे नहीं वही वही काम दो, खिलौना दे दो, वो खिलौना दो मिनट खेलेगा फिर फेंक देगा, लेकिन कुछ ऐसा काम दो जिसमें उसका दिमाग चले। थोड़ा समझदार होता है तो जैसे उसका दिमाग चलेगा वो उसमें इतना मग्न हो जाएगा जो और बातें सब भूल जाएगा, चंचलता भूल जाएगा। इसीलिए मन भी चंचल बच्चे की तरह है, पर छोटा बच्चा है, बहुत इनोसेंट है। उसको आप जो काम देंगे वो काम में वो अगर सहज व्यस्त हो जाएगा तो सहज ही मन एकाग्र हो सकेगा। और कई तो समझते हैं बस मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, और क्यों समझते, कहते अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो खाओ पियो मौज करो, अभी ये समय थोड़ी है मेडिटेशन करने का, जब बूढ़े होंगे ना तब सोचेंगे। कई ऐसे सोचते हैं जब बूढ़े होंगे तब सोचेंगे, अब बूढ़े होंगे तब सोचेंगे तो क्या होगा, सारी जवानी तो आपने ऐसे ही गंवा दी, मन को चंचल ही रखा, और बूढ़े हो गए तो मन कहाँ स्थिर रहेगा, बिल्कुल स्थिर नहीं रहेगा। उसके लिए तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कोई स्टूडेंट सारा साल पढ़ाई करे ही नहीं और जब एग्जाम का दिन आए एक दिन पहले किताब लेके बैठे, कैसे वो उसका दिमाग में कुछ भी जाएगा, नहीं जाएगा, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो अंत में परमात्मा की याद भी तब आएगी जब बहुत काल का अभ्यास होगा। इसीलिए हम ये कभी न कहें कि अभी तो समय थोड़ी है, जब बूढ़े होंगे तब करेंगे। इसलिए राजयोग को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। जैसे बच्चा एक पिता उसका, वो भी मनुष्य है तो बच्चा भी मनुष्य है, वैसे मैं आत्मा हूँ तो परमात्मा भी एक आत्मा है, लेकिन परमात्मा है, ज्ञान गुण शक्तियों में वो परम है, इसलिए उनको सदा शिव कहा। तो कहीं भी मन ले जाने के लिए चार आधार चाहिए। अगर ये चार आधार नहीं है तो मन वहां नहीं जाएगा। पहला आधार है पहचान। अब जिस व्यक्ति को आप जानते ही नहीं है, अब उसके लिए कोई कहे कि ये व्यक्ति कौन है, आप कहेंगे भाई मैं तो जानती नहीं हूं, तो आपका मन थोड़ी उसमें जाएगा। कितने करोड़ों इंसान है, सब में थोड़ी मन जाता है। इसीलिए कहीं भी मन जाने लिए, किसी में भी मन जाने लिए पहले उसकी पहचान चाहिए, फिर उसके बाद उनसे संबंध चाहिए। पहचान होते होते संबंध निकल आता है तो मन और जाता है, फिर संबंध कि संबंध पता होते 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 कुछ उसके गुण दिखाई देने लगते हैं तो उससे थोड़ा स्नेह भी हो जाता है, प्यार भी हो जाता है, और फिर उससे कुछ प्राप्ति भी होने लगती है तो आपका मन तो उससे दूर जाएगा ही नहीं। तो ये चार आधार हम परमात्मा से लगाएंगे। परमात्मा और आत्मा की पहचान, परमात्मा का आत्मा से, आत्मा का परमात्मा से संबंध, आत्मा का परमात्मा से प्रेम, और आत्मा को परमात्मा से प्राप्ति क्या है। अब ये चार बातें हम समझेंगे। तो आत्मा और परमात्मा की पहचान तो आपको मिल गई, फिर भी थोड़ा दोहराते हैं। आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा नहीं है, मैं आत्मा हूँ। कई तीन वाक्य पूछे जाते हैं, एक वाक्य है कि मेरे अंदर एक आत्मा है। अब मेरे अंदर एक आत्मा है का मतलब क्या हुआ, मैं शरीर हुआ और मेरे अंदर आत्मा है। दूसरा वाक्य है मेरे शरीर में मेरी आत्मा है, ऐसे भी लोग कहते हैं, इसका मतलब मैं कोई तीसरी चीज हो गई, मेरा शरीर मेरी आत्मा तो मैं कौन। हाँ, मेरे अंदर आत्मा है माना मैं शरीर हो गया, मेरे शरीर में मेरी आत्मा माना शरीर भी मेरा आत्मा भी मेरी, फिर मैं कौन। फिर तीसरा वाक्य है मैं आत्मा मेरे शरीर में हूं, ये बोलने वाली, देखने वाली, सुनने वाली, ये मैं आत्मा ही हूं। अब उस आत्मिक स्वरूप का अनुभव करने के लिए उस परिचय को पूरा समझना होगा कि मैं वो आत्मा, एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, एक चमकता हुआ सितारा हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। और मुझ आत्मा के अंदर 7 मूल गुण हैं जो आपको सवेरे बताया गया होगा आत्मा के लेसन में, और ये सारे गुण मेरे से अलग नहीं हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आपको शांति चाहिए तो अंदर जाओ, खुशी चाहिए अंदर जाओ, शक्ति चाहिए अंदर जाओ, बाहर नहीं है कुछ भी, सब कुछ आपके अंदर है। तो हमारे अंदर का मतलब क्या है? शरीर में नहीं है ये 7 गुण, ये शरीर की चीज नहीं है। शरीर की चीज क्या होगी? रक्त, पस, हड्डियां, पसलियां, मांस, ये शरीर की चीजें या जो अंतड़ियां, जो भी शरीर का है। पर शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ये सब किसकी चीज है? ये आत्मा की चीज है। इसलिए ये गुण हमको बाहर से नहीं मिलेंगे, ये खुद के चिंतन से ही मिलेंगे। कोई कहे कि मुझे शांति चाहिए, अब शांति कैसे अनुभव होगी? चाहे भगवान को 100 बार कह दो, हे भगवान मुझे शांति दो, शांति दो, तो भगवान शांति कैसे देगा? कोई चीज तो नहीं है ना जो शांति मेरे हाथ में दे देगा, लो बेटा शांति। जैसे बच्चा रोता है, मम्मी हमको लॉलीपॉप चाहिए, टॉफी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो माँ खरीद के दे देगी। अब शांति भगवान कहाँ से खरीद के आपको देगा? या प्रार्थना में ये भी कहते, इतनी शक्ति तू देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो मन का विश्वास कमजोर या शक्तिशाली तो आपके हाथ में है ना। अगर आपके अंदर में दृढ़ संकल्प है तो मन का विश्वास कमजोर क्यों होगा? तो इतनी शक्ति देना, शक्ति कोई बाहर की चीज थोड़ी है, वो आपका अंदर का विल पावर है। शरीर की शक्ति के लिए चलो डॉक्टर को कहो, डॉक्टर बहुत कमजोरी है, तो डॉक्टर कहेगा अच्छा आपके अंदर खून की कमी है, तो फॉलिक एसिड, आयरन टैबलेट, ये खाओ वो खाओ, तो आपके अंदर ताकत आएगी, या वो IV लगाते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं, तो थोड़ी ताकत आती है, वो शरीर की बात। लेकिन इतनी शक्ति तो देना जो मन का विश्वास कमजोर ना हो, वो विश्वास आपके अंदर ही है, केवल उसको संकल्प में लाना है। तो अगर कहेंगे शांति दो, ऐसे शांति भगवान भी नहीं दे सकेगा, ये आपके मन की स्थिति है। और वो मन की स्थिति हम कैसे अनुभव करते हैं? पहले उसके बारे में सोचते हैं। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। अगर आप सोचते हैं मैं बहुत अशांत हूं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको शांति नहीं दे सकेगी। और अगर आपने ये संकल्प किया कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, बस एक संकल्प, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये संकल्प किया और दुनिया के कोई भी शक्ति आपको अशांत नहीं कर सकती है। सोच के देखो। फिर इसमें और एडिशन है, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, फिर एक और वाक्य जोड़ दो, मैं शांति के सागर परमात्मा की संतान हूं। अब आपको तो परमात्मा की संतान, वो शांति का सागर है और आप उसके बच्चे हो, आप कैसे अशांत हो सकते हो? फिर तीसरा वाक्य जोड़ दो, मैं आत्मा शांति धाम का वासी हूं। ये संसार मेरा घर नहीं है, मेरा असली धाम तो शांति धाम है। तो मन कभी अशांत नहीं होगा, क्योंकि आत्मा को अपना घर याद है। 2 घर है आत्मा को, ये शरीर तो टेम्पररी घर है ना। जब आप परिचय पत्र में लिखते हैं ना, प्रेजेंट होम, प्रेजेंट एड्रेस, फिर दूसरा होता है परमानेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस तो आत्मा का ये भ्रकुटी है, तो पहला संकल्प यह है कि मैं आत्मा या भृकुटी में निवास करने वाली चैतन्य सत्ता हूँ, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। फिर दूसरा संकल्प, मैं आत्मा उस परम धाम का वासी हूँ, वो शांति का धाम, परम धाम, मुक्ति धाम, मन एक सेकेंड में उस धाम में चला जाए। फिर हम अपने घर को याद करते हैं, फिर हम इस संसार में क्यों आए ये और आगे सोचो, तो उपराम होंगे आप और वस्तु व्यक्तियों से। क्या सोचेंगे, मैं इस संसार में क्यों आया, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? केवल खाओ पियो मौज करो, ये तो मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है ना। कमाओ और हाँ विस्तार करो, मकान लो, जमीन लो, जायदाद लो, दुकान वकान, यही केवल तो जीवन का लक्ष्य नहीं है ना, क्योंकि अंत में तो ये सब यही छोड़ के जाएंगे। तो जीवन का लक्ष्य क्या, हम क्यों इस संसार में आए, वास्तव में आत्मा क्यों इस दुनिया में आई? आत्मा एक एक्टर है, एक्टर को रंगमंच चाहिए एक्टिंग करने के लिए। एक बच्ची है, बहुत अच्छी डांस करती है, अच्छा डांस करती है, हर बार कहेगी दीदी मुझे डांस करना है, मुझे डांस करना है। हाँ, कपड़े भी है, वो कॉस्ट्यूम भी है, तो उनको स्टेज चाहिए। तो हर आत्मा एक एक्टर है, हर एक बहुत बढ़िया आप एक्टर हो, और कितने रोल बजाते हो सारे दिन में, अलग अलग आप बजाते हो ना, एक पिता का रोल बजाते हो, एक बेटे का रोल बजाते हो, एक पति का रोल बजाते हो, एक दोस्त का रोल बजाते हो। माताएं भी कितने सुबह से रात तक कितने अभिनय करती रहती है, हर एक के सामने अलग अलग अभिनय, पिता के आगे अलग अभिनय, पति के आगे अलग अभिनय, बच्चों के आगे अलग अभिनय। तो कितने सुंदर आप अभिनेता हो हर एक, अब उस रूप से अपने आप को समझो।
Thank you.
आत्मा एक एक्टर हूँ, मुझे अच्छे से अच्छा रोल बजाना है। जो भी मुझे रोल मिला है उस रोल को अच्छा से अच्छा बजाना है। फिर परमात्मा की पहचान भी आप सबको मिल गई, मिल गई ना। जब हम कहते हैं परमात्मा तो किसको हम कहते हैं? उस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को। तो वो रूप में बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु है। उस बिंदु में सिंधु की शक्ति है। अब वो सिंधु से वो शक्ति हम लेते हैं, जैसे सूरज से किरणें लेते हैं ना, सवेरे सवेरे सूरज के आगे खड़े हो जाते हैं, उनकी किरणें लेते हैं। तो परमात्मा भी तो ज्ञान सूर्य है। उस ज्ञान सूर्य से ज्ञान गुण शक्तियाँ उनकी किरणें आत्मा को महसूस हो सकती है, लेकिन पहले उनसे संबंध जोड़ना पड़ेगा। तो परमात्मा सर्व गुणों का सागर है, वो परम धाम निवासी है। मैं आत्मा भी वहीं की रहवासी हूँ, तो मन से उसी धाम में चले जाओ जो आत्माओं का धाम है। परमात्मा का भी वही धाम है, एक ही एड्रेस है। और फिर महसूस करो कि कैसे मैं परमात्मा, मैं आत्मा, उस परम आत्मा के कितने समीप हूँ। उस समीपता को महसूस करो। अब कैसे करेंगे? हमको ये अनुभव करना है कि तीन बातों में आत्मा और परमात्मा में समानता है। जब समानता होगी तब समीपता भी होगी। एक दो के नज़दीक तब जा सकेंगे जब कोई ऐसी समानता होगी। तो तीन बातों की समानता है आत्मा और परमात्मा के बीच में। पहली समानता है स्वरूप की समानता। मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु, तो परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। ऐसे नहीं परमात्मा का तो कोई नाम रूप ही नहीं है और मैं तो इतना नाम रूप धर्म जाति वाला, तो मिलन नहीं होगा। जैसे उनका कोई दैहिक रूप नहीं है, मुझ आत्मा का भी ये शरीर रूप नहीं है, ये तो एक वस्त्र है, ये तो कपड़ा हमने पहना है, जैसे एक्टर वस्त्र पहनता है। तो रूप में भी समानता है। फिर दूसरा, निवास स्थान में भी समानता है। एक ही घर है, बच्चे का घर और पिता का घर अलग नहीं होता है। हाँ, बड़ा हो जाता है तो दूसरा घर ले लेता है, लेकिन बचपन में तो जो पिता का एड्रेस है वही बच्चे का एड्रेस होता है ना। तो घर भी एक ही है, हम एक ही घर के वासी हैं। और तीसरा, गुणों में भी समानता है। हाँ, गुणों में भी समानता है। जो आत्मा के गुण है परमात्मा के वही गुण है। इसीलिए कई लोग आत्मा को परमात्मा का अंश समझते हैं। अब अंश का अर्थ ये नहीं है कि उसका टुकड़ा। अब ये रुमाल है, उसका धागा निकाल दो तो कहेंगे भाई इसका वो धागा निकलता गया, टुकड़ा निकलता गया, निकलता गया, फिर इस रुमाल का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। तो आत्मा को उस रूप से अंश नहीं है कि वो आत्मा निकल गई निकल गई निकल गई तो परमात्मा का अस्तित्व खत्म हो जाए, इतनी आत्माएं निकल गई। परंतु अंश रूप में माना जो परमात्मा के गुण हैं वो आत्मा के भी गुण हैं। दोनों अनादि अविनाशी है, लेकिन अंतर क्या है? परमात्मा शांति का सागर है तो आत्मा शांत स्वरूप है, ये उसका गुण है। परंतु आत्मा देह में आने के बाद अपने आप को भूल जाती है, यही अंतर पड़ जाता है। अपने आप को देह समझने लगती है तो देह फिर धारियों के तरफ मन चला जाता है। पर जैसे ये निश्चय किया मैं एक आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, परमात्मा उस ज्योति स्वरूप की संतान हूँ, परम धाम का वासी हूँ, परमात्मा भी उसी धाम का वासी है, जो परमात्मा के गुण हैं वो मेरे भी गुण हैं, तो ये नहीं कहूँगी मैं हे प्रभु मुझे शांति दो, ये नहीं कहूँगी। ये गुण मांगने की चीज़ नहीं है, ये गुण अधिकार से लेने की चीज़ है। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं वैल्यूज कैनॉट बी टॉट बट दे आर कॉट। एक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाए कि गुस्सा नहीं करना चाहिए और खुद गुस्सा करता रहे तो क्या पढ़ाएगा? गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुद भी तो गुस्सा ना करे, वो उसके प्रैक्टिकल जीवन में हो ना। तो वैल्यूज कैनॉट बी टॉट बट दे आर कॉट। जो जैसे माँ बाप के अंदर जो गुण होंगे बच्चे वही सीखते हैं, माँ बाप को देख करके सीखते हैं। संग का रंग लग जाता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी हे प्रभु मुझे शांति दो, अब भाषा बदल गई राजयोग में। क्या मैं कहूंगी? शिव बाबा आप शांति के सागर हो और मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूं हूं। अब पिता शांति का सागर, बच्चा शांत स्वरूप होगा ना, वही गुण है। तो इसीलिए ये तीन बातों की समानता के आधार पर संबंध जुड़ता है, यही योग है। इसलिए इस योग में हम कहते चार चार कदम हैं। ये इसको राजयोग को हम यात्रा के साथ भी भेंट करते हैं, क्योंकि इस राजयोग का अंतिम मकसद यही है कि जो परमात्मा के गुण हैं वो मुझ आत्मा में भी अनुभव हो और मैं आत्मा अपने परफेक्ट स्वरूप में वापस पहुंचूं। जैसे आप मोबाइल को चार्ज करती हो तो फुल चार्ज 100% हो गया ना, तो आत्मा भी वास्तव में फुल 100% सब गुणों के स्वरूप फिर से बने उस पावर हाउस से शक्ति लेकर। तो चार स्टेजेस है इसमें। पहली स्टेज है आत्मा और परमात्मा का परिचय, वो परिचय करके उसका चिंतन करना, तब मन की स्वच्छता होगी, बर्तन साफ होगा। मन में आप क्या सोचते हो, कोई मंत्र केवल नहीं देंगे, मंत्र तो शब्द हो गया ना, अब उसका उच्चारण तो किया, जाप तो किया, लेकिन अगर अर्थ नहीं समझा तो वो जाप का आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। हाँ चलो मुख से और शब्द कुछ नहीं निकलेगा, पर वो स्थिति बनानी है। जैसे ओम नमो शिवाय का, तो ओम नमो शिवाय माना मैं शिव को नमस्कार कर रहा हूँ, तो उसमें मैं कौन हूँ जो शिव को नमस्कार कर रहा हूँ? मैं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सब नहीं, मैं आत्मा। फिर जिस शिव को नमस्कार कर रहा हूँ वो शिव कौन है, उसका परिचय, फिर उनसे आत्मा का संबंध जो अनादि अविनाशी है वो कहीं टूट चुका है, इसीलिए तो शक्ति नहीं अनुभव होती है। इतनी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब तक जो कुछ भी करते हैं, वो शक्ति क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि संबंध कहीं टूटा हुआ है, वो तार को जोड़ना है, रबर हटाना है, तब वो शक्ति का संचार होगा और आपको अनुभव होगा। तो पहला कदम है आत्मा परमात्मा का चिंतन, और जैसे चिंतन किया आत्मा का स्वरूप, आत्मा के गुण, आत्मा का धाम, आत्मा का पिता, और ये चिंतन जैसे किया मन स्वच्छ होना शुरू हो जाएगा। फिर परमात्मा से बातें करो, परमात्मा से रूह रियान दिल की बातें ईश्वर से करो, क्योंकि परमात्मा से हमारे सर्व संबंध है। जो संबंध आप चाहो आप उनसे निभा सकते हो, माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, सद्गुरु, साजन, वो उसको बच्चा भी बना सकते हो। सती अनसुईया ने तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को बच्चे के रूप में देखा। मानो जो संबंध चाहो आप उनसे कर सकते हो। देहधारियों के साथ संबंध एक या चलो दो होंगे, कोई आपकी बहन भी होगी और आपकी देरानी जेठानी भी होगी, चलो हो गया, बहन भी है, दोनों एक ही घर में, एक ही घर से भी आई, लेकिन बस और ज्यादा नहीं। लेकिन ईश्वर के साथ तो सब संबंध, अब वो संबंध का अनुभव कैसे करें वो फिर आप विस्तार से सेवा केंद्रों पर जाना। फिर तीसरा स्टेप है परमात्मा से जैसे मन की बातें करते 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 मन एकदम अव्यक्त हो जाता है, अव्यक्त स्थिति बन जाती है, देह से उपराम हो जाते हैं, मैं आत्मा परमधाम निवासी बन जाती हूँ, मन सब तरफ से भटकना बंद हो जाता है, परमात्मा के गुणों में हम विलीन होने लगते हैं, वो शांति के सागर में मैं शांत स्वरूप आत्मा समा रही हूँ। जैसे बूंद सागर में समाती है, ये कोई ऐसे नहीं आत्मा समा जाएगी परमात्मा में, ये योग की स्थिति है कि आत्मा परमात्मा के गुणों में विलीन हो गई। जैसे कोई किसी के प्यार में खो जाता है, तो परमात्मा से प्रेम अनुभव हो। अभी जो हमारा संबंध है ईश्वर के साथ वो स्वार्थ का संबंध है, हमको कुछ चाहिए तो हे भगवान। हाँ, स्टूडेंट सारा साल तो पढ़ाई नहीं करेगा और एग्जाम से पहले मंदिर में जाएगा, भगवान मुझे पास कर देना, कैसे पास करेगा, पढ़ाई तो की नहीं, तो ये तो स्वार्थ हो गया। और स्वार्थ में फिर कई क्या कहते हैं, भगवान तुम मेरा काम करोगे ना तो मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो भगवान मेरे प्रसाद का भूखा है क्या, उसको तो बहुत भक्त है देने वाले, मैं वो काम करेगा मेरा तब उनको प्रसाद मिलेगा, तब तक भूखा रहेगा क्या। लेकिन ये सब जो सौदा करते हैं या जो हम स्वार्थ दिखाते हैं, ये सच्चा संबंध नहीं है ईश्वर के साथ। सच्चा संबंध तो तब है जब सच्चा प्रेम हो, और प्रेम तब अनुभव होता है जब अंदर में कुछ समानता हो, और उस प्रेम में हम त्याग करने लिए तैयार हो जाते हैं। या तो हम और इस स्वार्थवश केवल मांगते ही रहते हैं, भगवान ने इतना दिया है वो तो भूल गए, और ही मांगते, और नहीं मिला तो भगवान तुम कितने निर्दयी हो, तुम मुझे देते नहीं हो, तुम बेरहमी हो, तुम ये क्या कहते हैं, क्या 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 शब्द बोल देते ईश्वर को, बहरे हो, यहाँ तक भी कह देते हैं, सुनते क्यों नहीं हो, तो भगवान क्यों सुनेगा। कहा जाता है भाग्य से ज़्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता, जो है उसका धन्यवाद तो करो, धन्यवाद तो करना ही भूल गए, ये सब उसी का ही तो है, वो तो धन्यवाद दूर का रहा, केवल मांगते ही रहते हैं, और जितना दिया उसका सदुपयोग कितना है वो तो है नहीं। इसीलिए और कुछ मत मांगो भगवान से, राजयोग रॉयल योग है। तो कई कहते हम कुछ भी भगवान से मांगते नहीं है, गुण मांगते हैं, शांति दो, शक्ति दो, हम कहते हैं वो भी मांगने की चीज नहीं है, ये अधिकार से प्राप्त करने की चीज है। शिव बाबा आप शांति के सागर हो, मैं आत्मा आपकी संतान, शांत स्वरूप और खो जाओ उस शांति के सागर में, एक सेकंड में आपको शांति की अनुभूति होगी। शांति क्या है, ये आत्मा की शक्ति है, वो शक्ति आपको अंदर से अनुभव होगी। फिर तीसरी अवस्था जो अव्यक्त अवस्था है, उसमें आत्मा परमात्मा के गुणों में जैसे खो गई। और फिर चौथी अवस्था वो अनुभूति, जो आत्मा का मूल स्वभाव वो आत्मा अपने अंदर अनुभव करने लगती है, वो अनुभूति अगर एक सेकंड की भी हो ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उससे आत्म परिवर्तन होता है, शक्ति का संचार होता है। तो इसीलिए ये चार स्टेजेस को हमें समझना होगा, कैसी है ये चार स्टेजेस। तो पहली स्टेज है आत्मा और परमात्मा का चिंतन, वो आपको बताया। फिर दूसरी स्टेज है परमात्मा से रूरिहान, और वो भी सब संबंधों से रूरिहान, मेरे सब संबंध है ईश्वर के साथ, ये फिर और विस्तार है जो आप सेवा केंद्र पर समझना। और जब सब संबंधों का हमें रस मिलने लगता है, उनसे ही हम बातें करते हैं, उनमें ही मेरा पूर्ण विश्वास है, तो आत्मा भय मुक्त हो जाती है, क्योंकि परमात्मा की छत्र छाया हम अनुभव करते हैं, वो हमारे साथ भी है, हमारा साथी भी है। भक्ति में तो कह देते हैं भगवान सब जगह है, लेकिन सब जगह केवल एक भावना, एक सैद्धांतिक स्थिति बना दी है, लेकिन ये भावनात्मक स्थिति होनी चाहिए। कभी भी अपने को अकेला नहीं समझो, हमेशा समझो शिव बाबा मेरे साथ है। तो शिव बाबा मेरे साथ है तो आपको शक्ति का अनुभव होगा, कोई जैसे बड़ा बुजुर्ग हमारे साथ है, पावरफुल मेरे साथ है तो डर थोड़ी लगेगा। तो भगवान मेरे साथ है, हम गीत भी गाते हैं, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो भय मुक्त हो जाते हैं, सुरक्षा की अनुभूति होती है, शिव बाबा मेरे साथ है, शक्ति का संचार होता है। और फिर धीरे धीरे एकाग्रता की जो स्थिति आती है, तो आत्मा परमात्मा के गुणों में समा जाती है। वो एकाग्रता आने से कितने जन्मों के पाप हमारे भस्म होते हैं। जैसे सूरज की किरणें कॉन्वेक्स लेंस से फोकस होती है और फोकल पॉइंट पर उस केंद्र पर आप कागज रखें तो वो कागज जलने लगता है, क्योंकि केंद्रित की हमने किरणें और वहाँ प्रतिबिंब बन जाता है सूरज का। तो कितनी शक्ति मिलती है उस सूरज से, उस प्रतिबिंब में इतनी शक्ति होती है क्योंकि एकाग्र की किरणें। तो जो भी हम संकल्प करते हैं वो स्थिति बनाते हैं, उससे महसूस होता है कि आत्मा में इतनी शक्ति का संचार हुआ, शक्तिशाली बन जाती है। शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, ये सब शक्तियाँ भी है जो आत्मा महसूस करने लगती है। तो वास्तव में क्या है, जब हम राजयोग अभ्यास करते हैं तो जैसे बैटरी चार्ज होती है, आत्मा की बैटरी भी ऐसे ही फुल चार्ज होने लगती है। तो जब हम उठते हैं लगता है आत्मा तृप्त हो गई, संतुष्ट हो गई, जिसके आधार से हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आता है। क्योंकि अंदर में ज्ञान मिला, फिर निश्चिंतन किया, फिर निरीक्षण किया, फिर विश्लेषण किया, फिर संयम किया कि मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो आत्मबोध हुआ, तो आत्म परिवर्तन जरूर होगा। और जब आत्म परिवर्तन हुआ तो फिर विश्व परिवर्तन भी होगा। इसीलिए हमारा ये नारा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। दुनिया को बदलना है तो पहले खुद को बदलो। क्या बदलो? अपनी स्मृति को बदलो, अपनी दृष्टि को बदलो, अपनी वृत्ति को बदलो, अपनी स्थिति को बदलो, और उसी के आधार से वातावरण को बदल सकेंगे तो ऑटोमेटिकली विश्व को भी हम बदल सकेंगे। तो अभी इसका हम अभ्यास करेंगे कुछ मिनट। कैसे अभ्यास करेंगे? अंदर में क्या सोचना है? न मैं ये शरीर हूँ, न मैं कोई अभिनय हूँ, मैं माँ हूँ, बेटी हूँ, बाप हूँ, पति हूँ, देवर जेठ ननन भतीजा भांजा ससुर सास, मैं एक आत्मा हूँ और सब संबंध देह के संबंध, अब उनको भूलना है। इसीलिए गीता में आता है सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। ये सब देह की जो भी बातें, इन सब को त्याग कर मेरी शरण में आओ। तो मेरी शरण में आओ माना पहले अपने आप को आत्मा निश्चय करो। ये जो अभिनय है आपका इस संसार क्षेत्र पर, ये इसका इस अभिनय को थोड़ा समय भूल जाओ और मैं आत्मा हूँ ये निश्चय करो। ये देह तो एक वस्त्र है, वस्त्र तो बदलते रहते हैं। तो न मैं ये देह हूँ, न ही मैं अभिनय हूँ, मैं तो एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, इस सृष्टि रंगमंच पर एक अभिनेता हूँ। तो मैं शरीर से न्यारी होकर, जैसे वस्त्र ढीला करते ना, तो वस्त्र को ढीला करना माना देह से न्यारा होना। यहाँ भ्रुकुटी में अपने आप को निश्चित करना, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा यहाँ भ्रुकुटी में निवास करने वाली शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर पिता की संतान आत्मा, यही मंत्र है। मंत्र का मतलब क्या है? मंत्र वो स्थिति जिससे मन को त्राण मिले, मंत्र। तो मन का त्राण, मन की तृप्ति, मन का संतुष्ट की संतुष्टता, मंत्र तो वही है। मंत्र का मतलब दूसरा भी होता है, मंत्र माना कोई मंत्रणा, कोई राय, कोई सलाह। तो बुद्धि मन को सलाह दे, हे मन तुम कौन हो, पहचानो अपने आप को। बुद्धि निर्णय करने वाली शक्ति मन को चलाए, मन बुद्धि को नहीं चलाए। अभी उल्टा हो गया है, कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो, ये सीधा रास्ता है। जो भी बात है पहले मन में सोचते हैं, फिर बुद्धि उसको समझती है, फिर कर्म करते हैं। लेकिन जब मनुष्य देह के अभिमान में होता है ना, तो उल्टा उल्टा हो जाता है। पहले कर्म कर दिया एक्सटेम्पो, बस फट से गोली चला दी, मार डाला, फिर सोच, फिर समझा ये गलत किया मैंने, मैंने उसको मार डाला, मर गया, फिर सोचते अभी क्या करे। तो सोच लास्ट आता है, जबकि सोच पहले चलना चाहिए। सोचने से पहले भी सोचो मैं क्या सोचने जा रहा हूं, तो वो सोचने के बाद फिर समझ चाहिए इसका नतीजा क्या होगा, फिर कर्म करो। अगर अच्छा नतीजा होगा, सबकी भलाई है उसमें, सबका कल्याण है, तो क्यों ना करो। परंतु मेरा अपना स्वार्थ है, दूसरों का नुकसान है, वो कभी नहीं करो। इसीलिए अपने आप के अंदर जो नेगेटिव विचार आते हैं उनको एक सेकंड में स्टॉप कर दो, ब्रेक है ना, जैसे गाड़ी में, तो ये बुद्धि मन को रोके और उसी सेकंड वो मन का सोचना उस गलत नेगेटिव का पूरा हो जाए, और फिर पॉजिटिव थॉट्स करके मन को परमात्मा में लगाओ, एक एक गुण परमात्मा से खींचो, जैसे वो शांति का सागर, वो शांति की शक्ति मुझे आत्मा में महसूस हो रही है, वो किरण मुझे मिल रही है और मैं शांत स्वरूप शांति में समा गई। तो चलिए अब हम इसका अभ्यास करेंगे, और अभ्यास में अंतर में जो भी और विचार है उन सब को कुछ देर के लिए हटा देंगे और अंतर में खुशी लाएंगे, खुशी और नशा कि मैं किससे संबंध जोड़ रही हूँ, कौन है मेरा पिता, कौन है मेरा सच्चा साथी, किससे मैं शक्ति ले रही हूँ, उस सर्वोच्च सर्वशक्तिमान की मैं संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो वो शक्ति रूप बन करके परमात्मा से शक्ति का अनुभव करें। तो चलिए सीधा बैठेंगे, ये लाल प्रकाश अभी जब जलता है तो हम महसूस करते हैं कि मैं आत्मा परम धाम में निवास करने वाली चेतन सत्ता परमात्मा के सामने हूँ। मन की आँख परमात्मा को देखे, जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान बेहद है, स्वयं को पहचाने, मैं एक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, प्रकाश पुंज हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, ब्रकुटी के मध्य विराजमान चेतन सत्ता हूं, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं, अब मन बुद्धि से इस देह से उपराम होकर परम धाम की यात्रा करें, पांच तत्वों से पार, अखंड ज्योति के महतत्व ब्रह्म महतत्व में मुझ आत्मा का निवास है। मन और बुद्धि से पहुंच जाए उस अखंड ज्योति के महतत्व में, जहां चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश है। जहां परम शांति है, जहां आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त है, जहां आत्मा परमात्मा के सम्मुख है, उस शांति के स्रोत से मैं आत्मा शांति की किरणें प्राप्त कर स्वयं में भरपूर हो रही हूं। शांति की शक्ति से भरपूर हो रही है। इतनी शांति का अनुभव हो रहा है। मेरा मन शांत है। बुद्धि शक्तिशाली है। मेरे संस्कार अति शुद्ध है, पवित्र है। इसी शक्ति को अपने में समा दो। और हल्के हो जाओ, अति हल्के। अब इसी शक्ति को स्वयं में समा कर वापिस लौटे। अपने शरीर में इस कर्म क्षेत्र पर फिर से कर्म करने लिए, पर उस अनुभव के साथ और जो भी कर्म करे वो उतने ही शांति के शक्ति के साथ हो, तो हर कर्म सार्थक होगा, श्रेष्ठ होगा। और ये जीवन आनंददायक बन जाएगा। और जन्म जन्म सफल हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।
जो भी भाई बहने 4 बजे ऐसा योग अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ हिलाकर दीदी को थैंक्स करेंगे साइलेंस में, ताली मत बजाना। 4 बजे करेंगे, सब आएंगे 4 बजे, केवल 4 दिन 4 बजे हमें करना है। फिर से ऐसे ऐसे करेंगे दोनों हाथ से, हाथों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं आप, ठीक है। हाथ नीचे करिए, अभी एकदम साइलेंस में रहना है, तभी एनर्जी आएगी आपके अंदर। अब रात को भोजन के बाद यहाँ वीडियो शो रहेगा 9 बजे, वीडियो शो के लिए जो आना चाहे आ सकते हैं। सुबह 4 बजे सबको आना है, आएंगे, आइए अपना लाभ लेकर जाइए, भगवान के घर में आप आए हैं।